ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चिकित्सा उपकरण रखने का स्थान और जनशक्ति सुनिश्चित करके ही उपकरण खरीदने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया निर्देश। मौजूदा निर्वाचन प्रणाली से राजनीतिक स्थायित्व तो नहीं आ सकता, इसलिए निर्वाचन प्रणाली में संशोधन होना चाहिए, सांसदों का सुझाव। आकर्षक रोजगार के लालच में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड न आने का नेपाली दूतावास थाईलैंड ने किया है आग्रह। और ईरान के सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की अदालत परिसर में ही गोली मारकर की हत्या। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण रखने के स्थान और जनशक्ति को सुनिश्चित करके ही उपकरण खरीदने के लिए बजट आवंटित करने का माथहत के निकायों को निर्देश किया है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि तालीम प्राप्त और अनुभवी जनशक्ति को ही उपकरण संचालन की जिम्मेदारी दी जाए। मंत्रालय ने परिपत्र करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि कार्यालयों में मौजूद उपकरणों को लंबे समय तक प्रयोग विहीन रखने और फिर से नया खरीदने के लिए उद्यत होने वाली परिपाटी को निरुत्साहित करने के लिए परिपत्र किया गया है। साथ ही मौजूदा उपकरणों के प्रयोग से उठे शुल्क में से 10% उपकरण मरम्मत के लिए रखने का निर्देश भी दिया गया है। नेपाल की विद्यमान निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने की बात पर सांसदों ने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा निर्वाचन प्रणाली समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के न्यायोचित व्यवस्थापन और स्थायित्व की दृष्टि से अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी है, इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है। संसदीय मामला पत्रकार समाज द्वारा आज काभरे में आयोजित नेपाल में निर्वाचन प्रणाली सुधार विषयक अंतर्क्रिया में वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा निर्वाचन प्रणाली से किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं आ सकता, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। नेपाली दूतावास बैंकॉक ने आकर्षक रोजगार के लालच में फंसकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में न आने का आग्रह किया है। दूतावास ने कहा है कि इन देशों में आकर्षक रोजगार के नाम पर नेपालियों ने काफी दुख झेले हैं और बंधक तक बनना पड़ा है। दूतावास ने सरकार द्वारा तय किए गए मापदंड के तहत श्रम स्वीकृति लेकर ही वैदेशिक रोजगार में जाने का नेपाली नागरिकों से अनुरोध किया है। मधेश आंदोलन में जीवन उत्सर्ग करने वालों के योगदानों का स्मरण करते हुए मधेश प्रदेश सहित काठमांडू में आज 7वां बलिदानी दिवस विविध कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी नेपाल द्वारा आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि विभिन्न जातियों, भाषाओं और समुदायों की साझा पहचान वाले नेपाल को सबल बनाने के लिए समान हक अधिकार दिए जाने चाहिए। आज ही सिराहा के लहान में आयोजित कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि कम्युनिस्टों के बाहुल्य वाले समाजवादी मोर्चा के साथ कोई सहकार्य नहीं होगा। पश्चिमी वायु के प्रभाव के कारण देश के तराई और घाटी के कुछ स्थानों में सर्द हवा और कोहरे की स्थिति के मद्देनजर मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। सुबह के समय तराई और उपत्यका के कुछ स्थानों में सर्द हवा और कोहरे की संभावना जताते हुए महाशाखा ने जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात, हवाई उड़ान, लगायत पर पड़ सकने वाले असर को लेकर सतर्कता अपनाने का आग्रह किया है। महाकाली नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन वाले मोटरेबल पुल और बस्ती के बाढ़ के जोखिम में पड़ने के बाद गृहमंत्री रमेश लेखक और भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दहाल ने आज पुल का निरीक्षण किया। पुल का मुआयना करने के बाद गृहमंत्री लेखक ने कहा कि गाइड बंड टूटने के बाद बस्ती और पुल दोनों ही जोखिम में होंगे, इसलिए तत्काल ही इसका समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि वे विकल्प की खोज के लिए ही स्थलगत अवलोकन में आए हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई और नहीं हो सकता। लमजुंग की बेंसी शहर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में स्थित मानव सेवा आश्रम में आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि विविध कारणों से सड़क पर पहुंच गए लोगों की सेवा के लिए किया जाने वाला सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काम के लिए उन्होंने आश्रम के योगदानों की प्रशंसा की। काठमांडू महानगरपालिका ने आगलगी के समय दमकल न जा सकने वाली सकरी गलियों में ड्राई राइजर लगाना शुरू किया है। महानगर के आपदा व्यवस्थापन विभाग ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया है। वहीं केंद्रीय योजना में शामिल न रहे स्थानों में भी वार्ड कार्यालय वार्ड के ही बजट से ड्राईराइजर लगा रहे हैं। ये जानकारी केएमसी ने दी। बता दें कि दमकल न जा सकने वाली संकरी सड़कों और गलियों में आग लगी के समय आग बुझाने के लिए सूखी पाइपलाइन ही ड्राईराइजर है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आप नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गोरखा होते हुए चीन को जोड़ने वाली सड़क अंतर्गत बेनीघाट लारके सड़क खंड की पिचिंग के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट स्रोत सुनिश्चित हुआ है। गोरखा सड़क योजना कार्यालय के प्रमुख अमेंद्र खड़का ने बताया कि अर्थ मंत्रालय से बजट का स्रोत सुनिश्चित होने के साथ ही इसी साल आरखेत से हाबाडाड़ा तक 10 किलोमीटर सड़क पिच होगी। सूखे भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो चुकी उत्तर दक्षिण कोशी सड़क अंतर्गत संखुआ सभा की भोटखोला गांवपालिका 3 सेम्बुंग में खांतवारी की माथांका सड़क खंड सुचारू हो गया है। ये जानकारी उत्तर दक्षिण सड़क कार्यालय के सूचना अधिकारी नरेश जिरेल ने दी। भोजपुर की रामप्रसाद राय गांवपालिका वार्ड नंबर 3 भूलके ने एक घर एक धारा अभियान संचालित कर 400 से अधिक घरों में पेयजल पहुंचाया है। वार्ड के अंतर्गत के सभी 468 घरों में पेयजल की पाइपलाइन पहुंचाई गई है। ये जानकारी वार्ड अध्यक्ष रामू थापा मगर ने दी। महोत्तरी की मटिहानी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के मझौरा गांव के 200 से ज्यादा बच्चे पिछले 2 महीनों से विद्यालय नहीं गए हैं। श्री माध्यमिक विद्यालय मझौरा में बाल कक्षा से लेकर विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत मुसहर समुदाय के बच्चे मार्गशीर्ष और पूस महीने में एक दिन भी विद्यालय नहीं गए। ये बात स्थानीय मुसहर अगुवा अघनु सदा ने बताई। उन्होंने बताया कि गरीब बस्ती के वे बच्चे ठंड की वजह से स्कूल नहीं गए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सुबह एक हमलावर ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान इन जजों के एक अंगरक्षक भी घायल हो गया। वहीं हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी। ईरान के सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों सख्त फैसले लेने वाले रूढ़िवादी जज माने जाते थे। दोनों जज कथित तौर पर सन 1988 में सरकार और व्यवस्था से असहमति रखने वालों जैसे राजनीतिक कैदी कार्यकर्ता और विपक्षी समूह को सामूहिक तौर पर फांसी देने के मामलों में भी शामिल थे। जिन जजों की हत्या की गई है उनकी पहचान मोहम्मद मोगीसेह और अली रजनी के रूप में हुई है। किसी भी समूह ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। साल 1999 में भी रजनी की हत्या का प्रयास हुआ था। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने रजनी के वाहन पर विस्फोटक फेंका था जिसमें वे घायल हो गए थे। बताते हैं कि ईरान और इराक के बीच 8 साल चला युद्ध साल 1988 में समाप्त हुआ था। रूहुल्लाह खामेनेई ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में युद्ध विराम को स्वीकार किया था। तभी निर्वासित ईरानी विपक्षी समूह मुजाहिदीन एक खल्क MEK ने अचानक ईरान की सीमा पर धावा बोल दिया था। ये समूह भारी हथियारों से लैस था। आखिरकार ईरान ने इस हमले को नाकाम किया, लेकिन इस हमले ने कई राजनीतिक कैदियों कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की नींव रखी। इसके बाद इन लोगों को सामूहिक फांसी का आदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों के मुताबिक करीब 5,000 लोगों को ये सजा दी गई। वहीं एक ईरानी विपक्षी समूह मुजाहिदीन एक खल्क MEK का दावा है कि 30,000 लोग मारे गए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा उपकरण रखने का स्थान और जनशक्ति सुनिश्चित करके ही उपकरण खरीदने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया निर्देश। मौजूदा निर्वाचन प्रणाली से राजनीतिक स्थायित्व नहीं आ सकता, इसलिए निर्वाचन प्रणाली में संशोधन होना चाहिए, सांसदों का सुझाव। आकर्षक रोजगार के लालच में कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड न आने का नेपाली दूतावास थाईलैंड ने किया आग्रह। और ईरान के सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की अदालत परिसर में ही गोली मारकर कर दी गई हत्या। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।